मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यात नमोता ही जाते भई अरहंता तिमहा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की,
बोलो क्षमा सागर जी महाराज भव्य सागर जी महाराज की।
हम सभी लोगों ने पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार किया है कि हमें अपने जीवन को जो शेष रहा है उसे कैसे अच्छा बनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन का एक सूत्र बना लें कि मुझे आज जो एक दिन मिला है जीवन जीने का, उसे मैं और बेहतर ढंग से जीऊंगा, जैसा कि मैंने अभी तक अपना जीवन व्यतीत किया है उससे भी बेहतर ढंग से जीऊंगा। जीवन के बेहतर होने के मायने हैं कि हम अपने जीवन को बहुत आत्मानुशासित होकर के जीते हैं, अपनी मर्यादाएं हम स्वयं निर्धारित करते हैं, क्योंकि अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित कर लेने से हमारी जो शक्ति है वो एक निश्चित दिशा में और आगे बढ़कर और हमें ज्यादा लाभ देती है। वनस्पति इसके कि हम अपनी जो आत्मशक्ति है उसको विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न कामों में और बिना किसी सीमा के और इधर से उधर लगाते रहें, तो हमारे जीवन में वो शक्ति किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे लिए मदद नहीं दे पाती है। एक मैंने शायद आपसे कहा था पहले कि किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, तो दूसरे ने बताया कि आप कहीं भी बोरिंग करिएगा और 200 फीट खोदिएगा, पानी मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, और वो दूसरे दिन उसके पास पहुंचा और कहा कि आपने मेरे से इतनी मेहनत करवाई और 200 फीट खोदने के बाद भी पानी नहीं मिला, आप चलिए देखिएगा। तो उसने कहा चलते हैं भाई, आपने 200 फीट खोदा और फिर भी पानी नहीं मिला, यहां तो पानी 200 फीट पे मिल ही जाना चाहिए। तो जाकर के देखा उन जनाब के इतने बड़े एरिया में उन्होंने 20 जगह 10-10 फीट खोदा था, टोटल हो गया 200 फीट। उन्होंने कहा 200 फीट तो खोदा हमने, अब 20 जगह 10-10 फीट खोदा, निकले ही नहीं, फिर 10 फीट खोदा, फिर नहीं निकला। इससे क्या मालूम पड़ता है कि यदि हम विभिन्न दिशाओं में अपनी शक्ति को इस तरह से लगाएंगे तो हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी मन वचन काय की जो सामर्थ्य है, जो मन वचन काय की शक्ति हमें मिली हुई है, विचार करने की शक्ति, अपने वाणी से अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करने की शक्ति, अपने विचारों के अनुरूप अपनी क्रियाओं को करने की शक्ति, ये तीनों चीजें हमें मिली हुई हैं, क्यों ना हम इन तीनों का सदुपयोग करें, इन्हें मर्यादित करके इनके दुरुपयोग से बचें। एक गृहस्थ के जीवन में अगर वो अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित कर ले तो गृहस्थी में रह करके भी वो अपने जीवन को बहुत ऊंचाई दे सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं रामचंद्र जी को। क्यों कहते हैं? उन्होंने अपना जीवन एक गृहस्थ की तरह जीने के बाद भी अपने सीमाओं को स्वयं निर्धारित किया, अपने जीवन को स्वयं अनुशासित किया। एक शावक के लिए अनुशासन कितना आवश्यक है अपन ये भी देख लें। हमें सिर्फ अपने जीवन में जो भी हमें चीजें मिली हैं उनका उपयोग अपने और दूसरे के कल्याण के लिए करना है। अगर ये हम अपनी मर्यादा का क्राइटेरिया खुद डिसाइड कर लें कि मैं अपने वाणी से, अपने शरीर से और अपने मन से और जो मुझे और भी साधन मिले हैं उन सब के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो सुबह से शाम तक। और यदि हम एक बात का इसका ध्यान रख ले तो आसानी से हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं, बहुत सारे जीवन के पतित करने वाले कारणों से भी हम आसानी से बच सकते हैं। ये इतनी चर्चा अपन ने पिछले दिनों की है, उसको अपन ने थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया। अपनी मर्यादाएं निर्धारित करने को ही आचार्य भगवंतों ने गुण व्रत कहा है। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में जो एक सद्भावना है, जो एक सबके कल्याण की भावना है, वो हमें पापों से बचा लेती है। अपने कल्याण की भावना हो या कि दूसरे के परोपकार की भावना हो, दोनों ही भावनाओं से हम पापों से बच जाते हैं। इसके लिए भी अपन ने चर्चा की थी कि जैसे किसी व्यक्ति से हमारा स्नेह हो तो क्या उस व्यक्ति को हम तकलीफ पहुंचाना पसंद करते हैं, उससे झूठ बोलना पसंद करते हैं, उसकी चीजों को चुराना पसंद करते हैं, उसके प्रति दुर्व्यवहार करना चाहते हैं क्या, उसकी सारी चीजें हड़प करके अपने पास रख लेना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। इन चीजों से हम बच जाते हैं। और अगर प्राणी मात्र के कल्याण की हमारे मन में भावना हो तो ये पांचों चीजें जिनको हम पांच पाप कहते हैं उनसे हम कितनी आसानी से बच सकते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी जरूरी है कि फिर हम अपनी भी मर्यादा निर्धारित करें। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें। दसों दिशाओं में हम जो अपनी एनर्जी, जो अपने मन की, शरीर की और वाणी की जो भी क्रिया करते हैं उन सब की एक सीमा निर्धारित कर लें। और इतना ही नहीं, जो अनावश्यक पाप हैं उनसे बचें। घर गृहस्थी में, व्यापार व्यवसाय में अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ते हैं मन वचन काय से, जिनमें कि हमारे द्वारा नहीं चाहते हुए भी और हमसे अपराध बन पड़ता है। ठीक है, वो हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे पाप हैं, बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनको कि हम अनावश्यक रूप से करते हैं, उन्हें आचार्य भगवंतों ने एक नाम दे दिया, अनर्थ दंड व्रत। अनावश्यक हिंसा से बचना। और इस तरह हमारे एक गृहस्थ के जीवन को भी बहुत व्यवस्थित और बहुत अनुशासित बनाने की प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने दी है। बहुत सारे क्रियाएं अपन ऐसी करते हैं, रास्ते से चले जा रहे हैं और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, उनको हाथ मारते हुए चले जा रहे हैं। पानी का नल दिखाई पड़ा, खोल दिया, थोड़ा पानी चाहिए था ज्यादा ढोल दिया, बिजली वेस्ट ऐसे ही जल रही है, अपन ध्यान ही नहीं दे रहे। ये ऐसी कितनी सारी क्रियाएं घर गृहस्थी में होती हैं। किसी को भी कोई ऐसी चीज दे देते हैं जिससे कि वो हिंसा में प्रवृत्त हो जाए और फिर ये सोचते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छी चीज दे दी। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अपन लोग जो बेवजह का काम करते हैं वो ये कि बैठे बैठे दिखते बाहर से बड़े शांत हैं लेकिन बैठे बैठे दूसरे के बारे में विचार करते रहते हैं। और दूसरे के बारे में भी भला विचार करें ये तो बहुत अच्छा है लेकिन भला नहीं करते। दो लोग बैठेंगे तो तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरे के बारे में भली चर्चा नहीं करेंगे। तुमने उनके बारे में ऐसा सुना? वो कहेगा तुमने आज सुना, हम तो पहले से उनके लक्षण जानते हैं। ये चर्चा का हमारा ढंग होता है, इसको कहते हैं अपध्यान। दूसरे की हार जीत, जो दूसरे के भले बुरे के बारे में और हम विचार करते रहते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ये दूसरे के जो दोष हैं उनको हम एक दूसरे से कहते फिरते हैं और विचार करते रहते। ये इस तरह की अनावश्यक क्रियाएं हैं श्रावक और एक सदगृहस्थ के लिए। आचार्य भगवंतों ने इससे भी बचने के लिए कहा। और अब अपन आ जाते हैं, थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हैं। एक श्रावक इन सब सांसारिक क्रियाओं के बीच भी अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित करके अपने जीवन को ऊंचाई देने के लिए और क्या करे, तो कहते हैं कि सुबह शाम थोड़ा सा समय निकाले और शांति से बैठे, भगवान का स्मरण करें, सुख दुख के बीच में उन क्षणों में समता धारण करें, जय पराजय हर्ष विषाद के बीच में वो समता धारण करें। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में कि सामायिक करें। पाप प्रवृत्ति से जो कि दिन भर करनी पड़ती है एक गृहस्थ के लिए, सुबह से शाम तक तभी उसकी गृहस्थी चलती है, तब भी वो क्या करे, उसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है तो वो इन सब चीजों से आसानी से बच भी नहीं सकता, तब वो क्या करे। तो आचार्य भगवान तो उसका भी उपकार चाहते हैं। देखो श्री गुरु सब जीवों का उपकार चाहे हैं, ऐसा लिखा उसने। वो कैसे भी अपने कार्य में लगा हुआ है, उसको कह रहे हैं कि सुबह शाम थोड़ा सा समय निकालना और पांचों पापों का, आधे घंटे को सही, एक घड़ी 25 मिनट की होती, एक घड़ी दो घड़ी के लिए, क्योंकि लिखा तो ये है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में हूं आध, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भी अगर हमारी पांच पाप से बच करके वो पंच परमेष्ठी के चरणों में व्यतीत हुई है एक घड़ी, तो वो एक घड़ी भी शेष 29 घड़ियों में, 30 घड़ी का दिन रात होता है, बाकी पर वो भारी पड़ेगी। बचपन में मैं देखा करता था, धोबी के यहां से कपड़े धुल के आते थे तो बाहर के चबूतरे पर कपड़े रखवा लिए जाते थे, रख दो सब इतने सारे कपड़े, सबकी इतनी इतनी आठ आठ दस दस घड़ी बनी हुई है, घड़ी मतलब तह करके रखते, तो इतने सारे रख दिए, उसने सब धो के लाया वो। और फिर पिताजी कहते थे कि बेटे एक लोटे पानी लाओ, तो पानी लाए तो उसमें से थोड़ा सा लिया और उस पर डाला, रख लो भीतर, हो गए शुद्ध। अरे ऊपर की एक घड़ी भी नहीं भीगी, 16 परते हैं उसकी, ऊपर की एक 16 घड़ियां हैं, 16 में से एक भी नहीं भीगी, थोड़ा सा पानी गिरा है लेकिन सब पवित्र हो गई। एक घड़ी पवित्र हो गई तो बाकी सब घड़ियां भी पवित्र हो गई। इसलिए आचार्य भगवंतों ने सदगृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए सुबह शाम एक एक घड़ी पांच पापों से बच करके, उनका त्याग करके, शांत भाव से बैठने के लिए और पंच परमेष्ठी का स्मरण करने के लिए सलाह दी। जहां अपने आत्म कल्याण की भावना ही प्रमुख है, जिन क्षणों में वे ही क्षण हमारे आत्म सामायिक के क्षण है, या कि जहां हम सुख दुख और हर्ष विषाद या कहें शत्रु मित्र, लाभ अलाभ, जय पराजय, इन सब संसार की बातों के बीच भी और हम थोड़े समय के लिए समता भाव धारण करते हैं, उसका नाम सामायिक, समता संहारे। जिन क्षणों में हम इन सब विषमताओं के बीच भी समता धारण कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक एक गृहस्थ के जीवन में कितनी विषमताओं का उसे सामना करना पड़ता है, कदम कदम पर जूझना पड़ता है। आचार्य महाराज हमारे हमेशा कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में कोई थोड़ा सा भी धर्म ध्यान कर ले तो उसका सौभाग्य है, क्योंकि सुबह से शाम तक पाप करने के अवसर ज्यादा हैं, पाप से बचने के अवसर कम है। कदम कदम पर, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, चाहे शरीर हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन इस तरह का है ही, और उस बीच में अगर वो समय निकाल करके और इस प्रक्रिया को करे तो अशुभ से बच करके और अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। लेकिन ये जो एक एक घड़ी या दो घड़ी कम से कम सुबह शाम बैठने की प्रक्रिया है, वो बहुत सहज होनी चाहिए। सहज होनी चाहिए के मायने क्या? ये हमारे ऊपर बोझ की तरह नहीं होनी चाहिए, इसे हम डेली रूटीन में ठीक इस तरह शामिल कर लें जैसे कि हम सांस लेते हैं। ऐसा ना हो कि अब ये सामायिक हमारे जी को करने के लिए डली है, अब जा और करने, जैसे और दूसरे काम हम बड़ी मजबूरी में करते हैं, ऐसे ऐसे सामायिक कोई काम नहीं है करने का, वो मेरे अपने सारे कामों से बच करके और शांत समता भाव धारण करने का समय है, ऐसा विचार करके थोड़ी देर बैठने की प्रक्रिया शुरू करें। उन क्षणों में हम क्या करेंगे? उन क्षणों में हम अपने को देखेंगे, और संसार में अगर देखें तो बहुत थोड़े क्षण हैं हमारे जब हम अपने आप को देखते हैं, हमारे सारे क्षण दूसरे के देखने में निकल जाते हैं। और दूसरे को भी किस दृष्टि से देखते हैं? कभी क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, कभी अहंकार की दृष्टि से देखते हैं, कभी किसी के दोषों की दृष्टि से उसे देखते हैं। हम व्यक्ति को भी कहां देखते हैं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, मैं कैसा हूं, मुझे कैसा होना चाहिए, इस बारे में तो बहुत बहुत मुश्किल है कि कोई दिन भर में 24 घंटे में कोई क्षण ऐसे आते हो जब मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा होना चाहिए। इसलिए सामायिक के क्षण अपने आत्मावलोकन के क्षण है, अपने आप के निरीक्षण करने के क्षण, सेल्फ इंटरेक्शन के क्षण है, हम अपने आप से मुकातिफ हो। उर्दू का शब्द है मुकातिफ, खुद ब खुद, जैसे कि आईने में हम अपने आप को खुद देखते हैं और फिर देखते हैं कि कहां मेरे चेहरे पर कालिख लगी हुई है और कहां मेरा चेहरा साफ है, कहां मेरे भीतर कमियां हैं और कहां मेरे भीतर कोई क्वालिटी है, तब फिर हम देखें कि हमारी वो क्वालिटीज हमने कैसे अचीव करी हैं, कैसे हमने कितनी मेहनत से उन चीजों को अपने भीतर प्रकट किया है, और बिना किसी मेहनत के मेरे भीतर कितनी सारी बुराइयां आ गई। अब मैं मेहनत करूं कि इन बुराइयों से बचूं और जो जो मेरे भीतर अच्छा है उसे और बढ़ाऊं। अगर मेरे अपने दोष देखने की दृष्टि मेरे अंदर है तो दूसरे के गुण देखने की दृष्टि भी मेरे भीतर डेवलप हो जाएगी, वरना दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति है तो मुझे फिर अपने दोष नहीं दिखेंगे, बल्कि मैं अपने गुणों को देखूंगा और दूसरे के दोष देखूंगा। और जो व्यक्ति अपने आप को एनालाइज करता है, अपने दोष देखना शुरू कर देता है, उसे फिर दूसरे के भीतर गुण देखना शुरू कर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अरे ये दोष तो मेरे भीतर भी है लेकिन ये जो गुण है ये तो मेरे भीतर नहीं है। इसीलिए ये प्रक्रिया रखी गई है गृहस्थ के जीवन में, जो कि पूरे 24 घंटे और दोषपूर्ण क्रियाओं से बच नहीं पाता है, फिर भी उसे निर्दोष बनाने के लिए आचार्य भगवंत चिंतित हैं कि वो अपने गृहस्थ जीवन में भी और निर्दोष होकर के अपने आचरण को पालन कर सके। मैं दुर्ग में था जब, अभी आचार्य महाराज उसी तरफ बिहार कर रहे हैं, सुना है दुर्ग डोंगरगांव डोंगरगढ़ और आसपास, वहीं पर अभी तीन चार दिन पहले वहीं थे हम लोग। उस समय आचार्य महाराज के साथ 1984 में इन्हीं दिनों थे, तब वहां की घटना है। वहां पर अब तो खैर हर जगह बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, पर उन दिनों हमने देखा कि परस्पर जैन यानी जैन, क्या श्वेतांबर, क्या दिगंबर, क्या थानकवासी, क्या तेरापंथी, क्या बीसपंथी, क्या तारणपंथ, ये दुनिया भर के जो फिरके हैं, इसको फिरका परस्ती कहते हैं, ये उन दिनों में वहां नहीं थी। घर ऐसे हैं कि बीच में एक दीवार में दरवाजा है, उस तरफ श्वेतांबर भाई हैं तो इस तरफ दिगंबर भाई हैं, और दोनों के यहां जो भी काम होते हैं आपस में एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। तब उन दिनों की बात है, अब तो थोड़ा सा व्यक्ति को पास में आने में जरा सोचना पड़ेगा कि ये उनके वाले महाराज हैं, इनके पास कैसे जाएं। ये होता है कि नहीं होता? जनरली होता है। तो ये इनके वाले महाराज और वो उनके वाले महाराज, वहां वैसा नहीं था। एक अम्मा जी आई मेरे से, बोली कि महाराज मैं 50 कायोत्सर्ग का नियम ले आपसे, कायोत्सर्ग करूं। उनके प्रणाम करने के ढंग से मैं समझ गया वो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार धर्म का पालन करते थे। वो तीन बार प्रणाम करते हैं, उठ करके बैठ करके तीन बार तिगुत्ती का प्रणाम कहलाता है, घनी खम्मा, फिर उसके बाद में सुखसाता, ये प्रक्रिया है पूछने की। तो वो उनकी प्रक्रिया से मैं समझ गया। मैंने कहा अम्मा जी आप इतना नियम मेले से ले रही, 50 कायोत्सर्ग करने का, मैं तो इतने कायोत्सर्ग दिन भर में मैं नहीं कर पाता, आप इतने कैसे करेंगे? वो प्यारे महाराज आप तो बहुत करते हैं, हम तो आपसे 50 कायोत्सर्ग ले रहे, वैसे तो हम 50 से भी ज्यादा कर लेते हैं। हमने कहा आप कैसे करते होंगे, मैं नियम तो देता हूं पर आप बताएं तो कैसे करते? बोले बहुत आसान है महाराज, मैं भोजन बनाती हूं और देखती हूं कि अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं घर में और बड़े लोग भी भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं, जब तक नहीं आ रहे हैं अब चार रोटी तो बना के रख ली है, और बना के क्या करें, आएंगे जब गरम गरम खिला देंगे, तब तक एक कायोत्सर्ग कर ले। एक कायोत्सर्ग कर लिया उतनी देर में, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 1 मिनट लगना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है नहीं, एक कायोत्सर्ग। फिर देखा कि अभी भी कोई नहीं आ रहा तो एक और कर लिया। घर गृहस्थी के कामों के बीच में 50 दफे सब कुछ छोड़ करके और 9वां नमोकार मंत्र पढ़ने वाला, इसको क्या कहेंगे? ये अपने पापों के बीच और धर्म ध्यान करके अपनी उन पाप की घड़ियों को उन धर्म की घड़ियों से नष्ट करने की प्रक्रिया कर रहा है। मैंने उन्हें 50 कायोत्सर्ग दी। आज तक मुझे वो घटना याद है, 1984 से आज 2004 20 साल हो गए। वो कभी मिल जाएंगे अम्मा जी, अब क्या पता, वो 60-65 साल की थी उस समय। मैं आज भी सुनाता हूं कि ये प्रक्रिया अपने यहां पर अगर फुर्सत है तो रिमोट चालू कर लो, थोड़े देखते रहे जब तक कोई आ है, जब तक, या कि और दूसरा काम विस्तार, पाप के काम विस्तार लेंगे अपन, समय खाली मिलते ही साथ। लेकिन समय खाली है मेरे पास, पहले चूल्हा जलाने में आधे घंटे लगा करता था, फूंकते फूंकते बेहाल हो जाते थे, आंख से पानी नाक से पानी आने लगता था और आधे घंटे में जलता था, और अब 5 मिनट में जलता है, वो 25 मिनट कहां चले गए? चक्की से आटा पीसने में 2 घंटे लगते थे, अब तो बटन दबा करके मिक्सी से और आसानी से, और ग्राइंडिंग मशीन आती है उससे बड़े आसानी से हम पीस करके मसाले भी और सब रख लेते हैं, वो टाइम कहां चला गया?
अगर भौतिक उपलब्धियों ने हमें आसानी करी है तो फिर हमारा फर्ज था कि हम उनका उपयोग करके और अपने समय को बचा करके उसे अपने कल्याण के कामों में लगाते। लेकिन हमारे पास जो समय बचा, अब हम समय काटने के लिए अपने अकल्याण के और मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। पहले समय बचाते हैं, फिर बाद में उस बचे हुए समय को काटने के लिए। अब समय बिताना है, समय बिताने के लिए क्या करो? कुछ भी करो भैया। सामायिक की प्रक्रिया इसीलिए रखी गई कि हम अपने व्यस्ततम जीवन में और अपने पाप बहुल जीवन में थोड़ा सा ब्रेक करें और उससे हट करके और एक क्षण के लिए ही सही और अपनी वास्तविक स्थिति का स्मरण करें, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने आप को देखें कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मेरे जीवन में क्या अच्छा है मुझे उसे रोज रोज बढ़ाना है, मेरे जीवन में जो बुरा है मुझे उसे रोज रोज कमती करते चले जाना है और भगवान मेरे साथ है, पंच परमेष्ठी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें याद करके और अपने जीवन को शुरू करता हूं, जब पूरा करता हूं तब भी उन्हें उनके स्मरण से पूरा करता हूं। अगर ये प्रक्रिया हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत सहज प्रक्रिया होनी चाहिए और अपन लोगों में इसकी प्रक्रिया बहुत कम हो गई। सुबह शाम बहुत कम लोग होंगे यहां पर बैठे जो कि सुबह से और 10 मिनट शांत बैठते होंगे, विचार करते होंगे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते होंगे। जिनने माला वाला का नियम लिया है वो एक माला फेर लेते होंगे कि एक माला का नियम लिया फेर लो नहीं, पर एक प्रसन्नता पूर्वक एक सहज होकर के कि अब जबकि मैं संसार के काम करने जा रहा हूं मैं जरा भगवान को याद तो कर लूं और मैं जरा विचार कर लूं कि मुझे आज जो भी काम करना है उनमें बड़ी सावधानी रखनी है कि मेरे पाप का संचय ना हो, मैं अपना धर्म ना भूलूं, कितना ही करता है सहज रूप से, इतना सहज होना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। बौद्ध भिक्षुओं का एक वो था, विहार था, उनके आश्रम को विहार कहते हैं, बौद्ध विहार। तो वहां पर बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहा करते थे। उन दिनों राजा भी जो है और बुलाने पर और उनके आश्रम वगैरह में चले जाते थे, तो भिक्षुओं ने राजा को आमंत्रित किया कि राजा आए और हमारे आश्रम को देखें। तो राजा साहब आए और बौद्ध भिक्षुओं ने उनको अपना आश्रम दिखाया। तो एक बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तो राजा साहब को कमरे में ले जाते बौद्ध भिक्षु, ये देखिएगा महाराज ये कमरा है जहां हम सब लोग बैठ करके और बुद्ध की वाणी सुनते हैं, बहुत अच्छा। फिर मजा ये था कि जिस भी कमरे में जाएंगे उस कमरे में जाने के लिए भी हॉल में से होकर ही जाना पड़ेगा और जब वापस आएंगे तो फिर हॉल में आना पड़ेगा। उस हॉल से सारे कमरे कनेक्टेड थे, तो जब भी जिस कमरे में ले जाएं उसमें से फिर वापस हॉल में आए और फिर हॉल में से फिर दूसरे कमरे में जाने लगे। और जब जब भी हॉल में आते थे तो राजा साहब पूछते थे और इस हॉल में क्या करते, तो सारे भिक्षु चुप रह जाते। कमरे में ले जाते तो वे बताने लगते कि यहां हम स्टडी करते हैं, यहां हम भोजन करते हैं, यहां हम डिस्कशन करते हैं, यहां हम और सोते हैं, ये सारी चीजें तो बताते हैं। लेकिन जब जब हॉल में आते हैं वो पूछते हैं कि यहां क्या करते हैं, तो सारे भिक्षु चुप, कोई कुछ नहीं बोलता। राजा को और तो सब ठीक लगा लेकिन ये बात जरा ठीक नहीं लगी। कह रहे भाई जो मैं पूछ रहा हूं वो बता नहीं रहे, अपने मन से बता रहे कि यहां हम भोजन करते हैं, यहां हम पढ़ते हैं, अरे वो तो मैं देख रहा हूं लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इस हॉल में क्या करते हैं, तो सब चुप। जब जाने लगे वापस तो भिक्षुओं ने पूछा कि आपको हमारा आश्रम पसंद आया? बोले हां पसंद आया, पर एक बात पसंद नहीं आई, बताइए क्या? वो ये कि तुमने मुझे सब घुमाया और सब कमरे दिखाए और मैं बार बार पूछ रहा था कि हॉल में क्या करते हो तो सब चुप रह जाते, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। तो सारे भिक्षुओं ने सिर नीचा कर लिया। एक ने धीरे से कहा कि आपसे क्या बताएं कि हम यहां क्या करते हैं, यहां हम कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो करते होगे। बोले जब दुनिया भर के सब काम कर चुकते हैं, जब कुछ नहीं करना रहता, भगवान का स्मरण करना रहता है, तब आकर के यहां बैठते हैं। अब हम क्या कहें कि हम क्या करते हैं। यहां हम संसार की भाषा में कोई काम नहीं करते, क्योंकि काम करना तो बहुत सांसारिक है। हम यहां इसलिए आपको कुछ नहीं बता पाए कि हम कौन सा यहां काम करते हैं। ना हम भोजन करते हैं यहां, ना हम सोते हैं, ना हम यहां पढ़ते हैं, ये सब तो काम है। लेकिन सामायिक करना, भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, ये कोई काम नहीं है जो हम आपको बता सके कि यहां हम सामायिक करते हैं, यहां हम ध्यान करते हैं, फिर तो वो काम हो गया। यहां तो जब हम संसार के सारे काम जो पाप बढ़ाने वाले हैं उनसे उपरत हो जाते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, तो यहां आकर के बैठ जाते हैं और सहज होकर के और अपने भगवान को याद करते हैं, अपनी वास्तविकता का स्मरण करते हैं। वास्तव में सामायिक ऐसी ही प्रक्रिया है। जब इसलिए आचार्य भगवंतों ने परिभाषा ही बना दी, पांचों पापों से बचने का नाम सामायिक, पंच परमेश्वर का स्मरण करने का नाम सामायिक, या सुख दुख के बीच समता भाव रखने का नाम सामायिक। इसका भी अपन को अभ्यास करना चाहिए। और भी किस तरह से सामायिक की विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, सामायिक के समय और विचार क्या करते हैं अपन, ये सब पर अपन एक एक करके जितना समय होगा उतना विचार करेंगे। आश्वासन मैंने यहां आने पर भी नहीं दिया था, और फिर भी यहां पर बिना आश्वासन दिए रुका हूं। आपको अपने ऊपर विश्वास है क्या? नहीं है? है आपको अपने ऊपर विश्वास? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पर इतने दिन रुकूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। और पहले दिन कह दिया था मैंने कि अगर आप मुझे राग द्वेष का पाठ सिखाएंगे तो जल्दी सीख के चले जाऊंगा, और वीतरागता का पाठ सिखाएंगे तो सीखते ही रहूंगा। अब आप इस चीज को तो समझते हैं, और ये तो हुई भावना की बात भैया, लेकिन भावना से बड़ा कर्तव्य है। भावना तो सबकी होती है, मेरी भी होती है। एक ही जगह रुका रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, मुझे धर्म ध्यान करना है। लेकिन श्री गुरु की जो आज्ञा है उसको मानना भी मेरा कर्तव्य है। वो मेरी भावना और आपकी भावना से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार जो भी होगा वो सब देखने में आ जाएगा। आप उसके लिए लेकर के चिंतित ना हो, बल्कि उसमें मेरी मदद करें। क्या? मुझे आज्ञा पालन करने में मेरी मदद करें। अगर आप सचमुच में ऐसा करेंगे तो आपको और भी लाभ मिल सकता है। मैं तो यही भावना भाता हूं कि आप ऐसे ही हमेशा और लाभ लेते रहें, लाभ मिलता रहे। धर्म ध्यान के क्षण अपने